ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में आज चर्चा हुई। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह बिदुड़ी ने चर्चा शुरू की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा की। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण पिछले सालों की ही तरह था। बेरोजगारी के मुद्दे पर श्री गांधी ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और इनसे जुड़े मुद्दों को सबसे पहले उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी खत्म करने में विफल रही है। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि जब भी महाकुंभ का जिक्र होता है तो कांग्रेस खुश नहीं होती है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान अब तक 35 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नरेश पटेल ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कोई उल्लेख नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में खाद्य महंगाई और कृषि ऋण को माफ करने की कोई बात नहीं की गई है। चर्चा में डीएमके पार्टी की केन मोई, शिवसेना यूबीटी के अरविंद गणपत सावंत, जनता दल यूनाइटेड के दिलेश्वर कामैत, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर, आरएलडी के राजकुमार सांगवान ने भी भाग लिया। उधर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट का मुद्दा उठाया। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने श्री खड़गे के इस आरोप का खंडन किया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने कहा कि देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरी बार जनादेश दिया है, जो सरकार की नीतियों और दृष्टि पर भरोसे का प्रतीक है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी कृषि और बेरोजगारी तथा महिला आरक्षण के मुद्दे उठाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रेलवे सुविधाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार का बड़ा मिशन शुरू किया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पश्चिम बंगाल में भारी निवेश किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज अंतिम समय सीमा तक सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी छतरपुर और कालकाजी विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकें की। उधर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने जंगपुरा में डोर टू डोर कैंपेन और कस्तूरबा नगर क्षेत्र में रोड शो कर मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर समर्थन जुटाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बुधवार को होगा और मतगणना शनिवार को होगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के दौरान आज 2,33,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। इस अमृत स्नान की शुरुआत 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ हुई और बाद में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हेलीकॉप्टर द्वारा साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। जम्मू कश्मीर में आज दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले में एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने कुलगाम के बेहीबाग इलाके में पूर्व सैनिक और उनकी पत्नी और बेटी पर हमला किया। हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी तथा रॉ जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में पंजाब की सिफत कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गिविन एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।